சாந்தி. பட பவர்ஃபுல் விஷய கதை, தோடா ஹல்கா ரக்க தேதே. அப் ஜோ சபி யோக மே பேட்டே, கின் கின் கா யோக அச்சா லகா? அச்சா, மாதாவோ கா கம் லகா? கியோ, மாதாயே தோ ஹமேஷா ஆகே ரஹதி ஹேன். மேனே இஸ்லியே கஹா ஹல்கா டோபிக ரக்கனே கே லியே, கியோகி யே ஜ்வாலா ஸ்வரூப் யோக थोड़ा गंभीर विषय है, आप कहीं डर जाएं, डर जाएं माना निराश हो जाएं कि हमसे तो ये होगा नहीं, हम आपको निराश नहीं करना चाहते। इस विषय पर हम बहुत अच्छी चर्चा करेंगे, लेकिन ये मेहनत का विषय है। पहले तो मैं आप सबके सामने ये कहूं, इसके कई नाम हैं, ज्वाला स्वरूप योग, बिंदु रूप बीज रूप योग, पावरफुल योग, ये एक ही योग के सब नाम हैं। और इसकी डेफिनेशन है, इसकी परिभाषा है, जब हम बाबा के साथ एक संकल्प में स्थित हो जाएं, एक संकल्प में स्थित होना ये पावरफुल योग है। बाबा ने इसको ज्वाला स्वरूप नाम दिया था, ज्वालामुखी तो बाद में आया, ज्वालामुखी तो पर्वत होता है, जो फट जाता है तो ज्वाला निकलती है और सब भस्म हो जाता है आगे पीछे का। हमारा योग एक अग्नि बन जाए जिसमें विकार और विकर्म नष्ट हो जाएं, जिसमें हम औरों के भी विकारों को नष्ट करने लगें, ऐसा ये योग है। परंतु इसके लिए आवश्यक है कि हम लंबा समय चित्त को शांत रखने में सफल हुए हों। चित्त को शांत रखना सबसे बड़ी चीज है, और कलयुग के अंत में तो और बहुत बड़ी चीज है। ये विभिन्न परिस्थितियों में रहते हुए, ग्रस्त की जिम्मेदारियों में रहते हुए, संसार की गंदगी में रहते हुए, चित्त को शांत करना आप में से बहुत लोग कहेंगे असंभव है, बहुत कहेंगे बहुत कठिन है, इसमें अच्छी साधनाओं की जरूरत होती है। ये सब शास्त्रों में भी है, योग दर्शन जो भारत की शास्त्रों की योग के बारे में सबसे श्रेष्ठ पुस्तक है। आजकल लोग उसे नहीं जानते, ना पढ़ते, ना वो बाजार में मिलती कहीं। अगर आप ढूंढने जाओ अपने शहर में हिसार में तो कहीं नहीं मिलेगी वो, इसलिए उसका महत्व तो खत्म हो गया है। वो सन्यासियों के लिए थी, उसमें भी ये शब्द आ गया है, निर्बीज अवस्था। बीज रूप आत्मा जो बीज है और परमात्मा जो बीज है, उसमें स्थित हो जाना। वहां परमात्मा का कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए मन को शांत कर देना, जीरो कर देना, निसंकल्प कर देना, इसको उन्होंने निर्बीज स्थिति, निसंकल्प समाधि कहा। ऐसा होने पर मन की शक्तियां बहुत बढ़ जाती हैं, इसलिए जिन्होंने ये किया वो बहुत बड़े सिद्ध पुरुष बन गए, उनके पास अनेक सिद्धियां आ गई, लेकिन कितनों ने किया होगा, लाख सन्यासियों में से दो चार, इससे ज्यादा नहीं, और उसे नहीं हुआ। क्योंकि मन को शांत करना, एक पर स्थिर कर देना, ये सबके लिए अति कठिन काम हो गया। तो पहले हम चर्चा करेंगे, जो एक बहुत लंबा विषय है, अपने चित्त को कैसे शांत करें। लेकिन इससे पहले मैं बीज रूप के कुछ अभ्यास आपको बता देता हूं, ताकि आपको सहज लगे। पहला अभ्यास, आत्मा के स्वरूप को देखना। केवल चमकती हुई मणि दिखाई दे, बाकी कुछ है ही नहीं, जैसे शरीर भी नहीं है। करेंगे हम इसकी प्रैक्टिस। दूसरा, अब आत्मा उड़कर चली गई शिव बाबा के पास, परम धाम, ऊपर वो नीचे मैं, बस और कुछ नहीं। उसके स्वरूप पर बुद्धि स्थिर हो गई। ये पावरफुल बीज रूप ज्वालामुखी योग। इसके दो और पावरफुल स्वरूप, सर्वशक्तिवान, सिर के ऊपर छत्र छाया है, नीचे मैं, यहां शिव बाबा, यहां परम नाम की बात नहीं, यहां इस धरा पर, नीचे मैं, सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान छत्र छाया। ये और सरल हो जाएगा, क्योंकि परम धाम में आत्मा को ले जाके बैठाना, ये बहुतों से नहीं होता, नहीं होगा। उसके लिए ब्रेन भी बहुत पावरफुल चाहिए और अभ्यास भी लंबे काल का चाहिए। लेकिन बाबा को छत्र छाया बना लेना, ये सहज होगा। दूसरा स्वरूप, ये सब बाबा के बताए हुए हैं। दूसरा स्वरूप, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, और ज्ञान सूर्य शिव बाबा आंखों के सामने है। अब उसे सामने देखेंगे, तो चार फुट दूरी पर सामने, सामने से उसकी किरणें पड़ रही हैं। क्लियर है ना? इसके अलावा बीज रूप की प्रैक्टिस, मैं आत्मा यहां और बाबा वहां, उसकी किरणों का फाउंटेन मुझ पर पड़ रहा है। जैसे हम इस फाउंटेन के नीचे हैं, कभी शांति का, कभी प्योरिटी का, कभी शक्तियों का। ये सब बीज रूप की प्रैक्टिस है। अब इसमें दो चीजों पर आप ध्यान देंगे। एक है मन को शांत करके ये अभ्यास करना, और दूसरा है ये अभ्यास करना और मन का शांत होना। ये सहज है दूसरा, क्योंकि मन को शांत करके करना कभी नहीं होगा, ये अभ्यास करना तो मन शांत होने लगेगा। तो सभी, अब क्या क्या जरूरी है इसके लिए, ज्ञान का बल पहली धारणा। कोई सोचे हम तो मुरली सुनते ही नहीं, टाइम नहीं, और योग लगा लें, इम्पॉसिबल। ज्ञान का संपूर्ण बल। दूसरा, त्याग का संपूर्ण बल। जिस चीज के त्याग की जरूरत हो, एक सेकंड में कर दें, जो जितना त्यागी वो उतना ही सहज तपस्वी। तीसरा, कर्मेंद्रियों के रसों का त्याग, त्याग में ही कर्मेंद्रियों के रसों का त्याग। चौथा, बहुत अच्छी प्रैक्टिस, समय निकालना है। पांचवा, थोड़ा एकांत। एकांत और अंतर्मुखता के बिना कोई भी ये पावरफुल योग नहीं कर सकता, इससे ही विकर्म विनाश होते हैं, तेज गति से होते हैं। लंबा समय ये अभ्यास करेंगे तो आत्मा बहुत पावरफुल भी हो जाएगी और विकर्म भी विनाश हो जाएंगे। कैसे इससे विकर्म विनाश होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको सुना देता हूं, जो उस चीज को ग्रहण कर सकें। जो कुछ हमने किए हैं कर्म सतयुग से लेकर और कलयुग अंत तक, वो सब हमारे ब्रेन में प्रिंट हैं, सूक्ष्म रेखाएं हैं, तरंगे हैं ब्रेन में। जब हम स्वमान का अभ्यास करते हैं तो जो अच्छी तरंगे हैं वो जागृत हो जाती है। मान लो हमने सोचा, मैं देव कुल की महान आत्मा हूं, तो देवत्व, सतयुग का देवत्व जागृत होने लगेगा। हमने सोचा मैं एक महान आत्मा हूं, मानताएं जागृत होने लगी। हमने सोचा मैं विजय रतन हूं, विजय के संस्कार जागृत हो जाएंगे। ये संकल्प बहुत बहुत पावरफुल चीज है। किसी ने सोचा विकारों के बिना थोड़ा ही दुनिया चलती है, इसमें ही तो आनंद है, तो विकार जागृत हो जाएंगे। क्लियर है ना? अब ऊपर से शक्तियों की किरणें आत्मा में आ गई, जो हमने चार पांच अभ्यास कहे, उसके द्वारा आत्मा में सर्वशक्तिवान की शक्तियों की किरणें आ गई। वो पहले फैलती हैं ब्रेन में, इधर दिमाग में। तो जो ये गलत प्रिंट है ना विकारों के और पापों के, वो उससे डिलीट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यह है विकर्म विनाश। आवश्यक है ऐसे योग के लिए, और बहुत सारी चीजें हैं, विकर्म होना बंद हो जाए। अगर सूक्ष्म विकर्म होते रहते हैं तो योग लगेगा नहीं। अगर मन पर बहुत बोझ रहता है, चिंताएं रहती हैं, डर रहता है, नफरत घृणा रहती है, तो योग लगेगा नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, दो चीजें हैं हमारे पास, मन और बुद्धि, जिनसे हम योग लगाते हैं। मन में श्रेष्ठ संकल्प हो, और बुद्धि का क्या काम होगा योग में, बोलो? विजुअलाइजेशन, देखना, बुद्धि स्वच्छ हो। अब बुद्धि ने, सबने अपनी बुद्धि को बहुत भरा है। किससे किससे भरा है? सबकी बुद्धि क्या बन गई है? आपने सुना ही है, मैं बहुत कहता हूं, डस्टबिन, डस्टबिन, कचरे का डब्बा। चाहते हैं सुगंध हो जीवन में, भरा है डब्बा किचड़े से, सुगंध कहां से आएगी? अब जो इसको खाली करे वो योगी बने। सोच लो, खाली करेंगे, चाहते हैं करना, देखो कैसे खाली होगा। नफरत को प्रेम में बदल दो, नफरत खाली। बुरी भावनाएं हैं उन्हें शुभ भावनाओं में बदल दो, वो सब भावनाएं खाली, ये काम बहुत जल्दी हो जाता आप ही। पर चिंतन की आदत है, छोड़ दो वो किचरा खाली। ऐसे ही बिना मतलब सोचते रहने की आदत है, उसको ठीक कर लो वो खाली। तो इस गंदगी को साफ करने का तरीका बहुत सहज है। दूसरा देख लें तो स्वमान का अभ्यास। लेकिन मैं आप सभी का एक चीज पे और ध्यान दिलाऊं, जीवन में कुछ महान लक्ष्य लेकर चलना ही चाहिए। बहुत ब्राह्मणों के जीवन में भी महान लक्ष्य नहीं है, इसलिए अनेक आत्माएं समस्याओं के चक्रव्यूह में फंसती जा रही हैं। ब्राह्मण भी, दुनिया वाले तो फंस रहे हैं, ब्राह्मण भी बहुत उलझ रहे हैं। और जिन्होंने जीवन भर अच्छे अभ्यास नहीं किए, श्रीमत की अवज्ञाएं की हैं, वो अब ज्यादा उलझ जाएंगे। इसलिए अभी समय तो बचा नहीं पुरुषार्थ का, थोड़ा सा ही बचा, लास्ट पॉलिशिंग। अब भी अपने जीवन के लक्ष्य को महान बना दो। कुछ करके जाना है संसार से, ऐसे ही नहीं चले जाना है। चिंताओं में, मोह ममता में, बच्चों की परेशानियों में, अपने ही संस्कारों के द्वंद में ये जीवन समाप्त न हो जाए। पोतों को बच्चों की समस्या है, माताएं परेशान रहती हैं। मैं माताओं को हमेशा एक बात कहता हूं, बच्चों की चिंताओं से आप परेशान हैं तो आपके बच्चे बिगड़ते ही जाएंगे। स्वयं परेशान रह के आप उन्हें सुधार नहीं सकते। उन्हें सुधारना है तो बोलो, माताएं बोलो, हैं? बाबा को सौंप दो, हैं अपने कैसे दे दें, उसे दिए नहीं जाते, जो दे दें तो अच्छा है। घर में अच्छे वाइब्रेशंस बन, मुझे अभी अभी की याद आ रहे, चार पांच माताएं आई, कहा मिलना है मुझे, यहां आना था। मैंने कहा चलो मिल लो भाई, ऐसे ही एक एक की भयंकर समस्या है, भारी नहीं भयंकर। अब बेचारी माताएं ना खुश, योग का तो प्रश्न ही नहीं है, खुशी भी नहीं जीवन में, बच्चे हैं ये भी सुख नहीं, बच्चे परेशानियां लेकर आ गए हैं। का 20 साल का लड़का है, न पढ़ता, बीए कर रहा है, उसकी इच्छा ही नहीं मैं कर लूं, काम मिल रहा है मैं नहीं जाऊंगा काम करने, शराब पीने लगा है, मेरी बिल्कुल नहीं सुनता है। मैंने कहा क्या करें, माँ दुखी होगी ना, सब माँ सोचती है ना हमारे बच्चे अच्छे हों, पढ़े लिखे, कुछ काम करें, लेकिन उन पर कलयुग का प्रभाव, तो कैसे ठीक करेंगे इसे? अच्छे वाइब्रेशंस कब आएंगे हमारे पास? जब अच्छा स्वमान होगा, अच्छा पुरुषार्थ होगा, तो लक्ष्य बनाओ। मैं भट्टी में भी कहा, आपके वहां भी 3 बार माताएं योग में बैठें और भोजन बनाते क्या अभ्यास करें, मैं परम पवित्र आत्मा। अगर माताएं इतना ही कर लें तो बेड़ा पार, पर माताओं से होता नहीं, सबसे 100 में से 5 कर पाती हैं, बाकी कहते हैं भाई जी होता नहीं। मैंने कहा ठीक है, मैं हंसी में क्या करता हूँ, किराए पे रख लो किसी को, आपके लिए योग कर लेंगे, जैसे भक्ति भी तो करा देते हैं ना, लो वही 501 रुपया लो, इसके नाम से कर देना, वो नाम गोत्र आदि पूछ के उसके नाम से पूजा पाठ कर देते हैं। इधर भी कुछ प्रथा चला दी जाए ऐसी, टीचर बहने भाई योग नहीं लगता तो किसी को किराए पे रख लिया जाए, जिनका अच्छा योग लगे और वो अच्छा योग लगा के कल्याण कर दें। चलो अब पहले अभ्यास करेंगे, देखें अपने को मस्तक के बीच में चमकती हुई मणि, रेड लाइट कर दो भाई, चमकती हुई मणि देखें, सूक्ष्म बिंदु उससे चारों ओर बहुत बहुत किरणें फैल रही हैं, तेजस्वी किरणें। शरीर जैसे कि है ही नहीं, लोप हो गया, केवल मैं आत्मा। अब मैं आत्मा उड़ चली परम धाम की ओर। देखें ऊपर महाज्योति, सर्वशक्तिवान, प्यार के सागर, उनके साथ हूँ मैं दोनों निराकार। बाबा की किरणें मुझ में समा रही हैं। ओम शांति। जैसे आज की मुरली थी, याद है, चिंतन, एकांत में थोड़ा चिंतन अवश्य करें। जो लिखना जानते हैं वो लिखें, कुछ सुंदर विचार लिखें। चिंतन के बहुत सारे तरीके हैं। बैठ जाओ, आज स्वमान की 25 पॉइंट लिखते हैं, आज खुशी की 10 पॉइंट लिखते हैं, संतुष्ट कैसे रहे उसकी कुछ बातें लिखते हैं, खुशी क्यों गुम होती है उसकी कुछ बातें लिखते हैं, टकराव क्यों होता है उसकी बात लिखें, मैं कभी टकराव में नहीं आऊंगी उससे पॉइंट निकाल लें, ये करेंगे कभी टकराव नहीं होगा। एकांत चिंतन स्वयं के प्रति, बहुत अच्छा चिंतन मैं आपको एक देना चाहता हूं। रोज करने की जरूरत है, हम सबको करने की जरूरत है, मेरे सहित सबको। संगम युग पर क्या हम वही कर रहे हैं जो हमें कर लेना चाहिए, या वो कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए? कैसे बिता रहे हैं हम अपने संगम युग के दिन? चिंतन करें एकांत में, चिंतन ही आनंदित कर देगा। थोड़ा अंतर्मुखता रहे, पूरा मौन आप न रखो, एक या दो दिन वीक में कम बोलना, उससे हमारी शक्तियां बहुत बचती हैं, एकाग्रता अच्छी हो जाती है। एकांत और अंतर्मुखता एकाग्रता की नींव है, बढ़ाना है दोनों को। हमें आत्मा और बाबा के स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर करने की प्रैक्टिस करनी है। मैं सिखाता हूं, आपको भी सिखाया होगा भक्ति में, 10 मिनट बैठो, आत्मा को देखो, बाबा को, फिर आत्मा को, फिर बाबा को, 10 सेकंड। 10 सेकंड अगर उसे देखने में हम सफल होते हैं तो बहुत अच्छे अनुभव होंगे, फिर आधा मिनट तक ले चलो उसे। तो हमें ये साधनाएं करनी पड़ती हैं, मेहनत करनी पड़ती है अपने से। बिना मेहनत के ये योग सिद्ध नहीं होता। सहज योग है मेरा बाबा, वो तो ठीक है मेरा बाबा, वो मेरा है, ये नशा सहज योग है। इससे भी फायदे होते हैं, जितने हम नशे में रहते हैं तो क्या फायदा होगा, बोलो, गहरी बात यही सब होगा, लेकिन इसके पीछे संकल्प शांत रहेंगे। इसलिए ईश्वरीय नशा या स्वमान योगी के लिए बहुत बड़ा आधार है, जो चलते फिरते किया जाए, उसमें कुछ बैठने की आवश्यकता नहीं। चल फिर काम कर रहे हैं, किसी अच्छे स्वमान का अभ्यास कर लें। आप एक स्वमान ले सकते हैं रोज, दो तीन ले सकते हैं, उनका अच्छा अभ्यास करते रहो, बहुत फायदे हो जाएंगे। व्यर्थ से स्वयं को बचाना है। मैं व्यर्थ की बात पे न जाके कुछ पॉजिटिव बातें आपके सामने रख देता हूं, जिसकी प्रैक्टिस करने से आपे व्यर्थ कम हो जाता है। हमें एक एक चीज को व्यर्थ को छोड़ने की जरूरत नहीं, बस एक चीज पे ध्यान दें। बाबा का बहुत पुराना महावाक्य, नो क्वेश्चन नो कंप्लेंट, नो इंग्लिश अब आगे का सब नहीं बोलेंगे, आश्चर्य। कोई आश्चर्य भी न लगे सब कुछ देखकर, हाय ये क्यों हो रहा है, ये भी न उठे। ऐसा भी होता है क्या, ये आश्चर्य भी न हो, किसी की कंप्लेंट भी न हो, ये तीन धारणाएं करेंगे, कंप्लीट बन जाएंगे, संपूर्णता आ जाएगी। ड्रामा का इतना अच्छा ज्ञान यूज करना है, क्वेश्चन हो ही नहीं। देखें ज्ञान के क्वेश्चन, वो अलग चीज है, जिन्हें क्वारीज कहते हैं। हमारे मन में इच्छा होती है कुछ जानने की, वो अलग बात। क्यों ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, बाबा भी ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, बाबा के बारे में बहुत क्यों उठता है लोगों का, आजकल तो ज्यादा ही उठने लगा है, अव्यक्त बाबा को देख के संशय आने लगा है। हर चीज का उत्तर हमारे पास होगा तो क्यों से मुक्त रहेंगे। और ड्रामा में सब कुछ ठीक हो रहा है, बड़ी गहरी बात है ये। अपने साथ गलत हो रहा हो तो मन सोच भी नहीं सकता सब कुछ ठीक हो रहा है, क्योंकि सब बिगड़ा हुआ काम, किसी की शिकायत भी नहीं। इसने मेरे से ऐसा किया इसलिए मैं स्थिति बिगड़ी, मेरी स्थिति बिगड़ी, इसने ऐसा किया तो मैंने ज्ञान छोड़ा, कई लोगों की ये भी शिकायत है। इसने सहयोग नहीं दिया तो हम आगे नहीं बढ़े, शिकायतें बहुत रहती हैं। शिकायतें नहीं, आगे बढ़ने के लिए सदैव जानना चाहिए। लोग मनुष्यों का आधार लेते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो सोचो तो सही, जिसे भगवान साथ दे रहा है क्या उन्हें आगे बढ़ने से कोई मायावी शक्ति रोक सकेगी। मनुष्यों का सहारा लेके क्या करेंगे, स्वयं भगवान सबको दे रहा है। अभ्यास करें, इसका अनुभव करें। तो पहली चीज, अब ये बातें आपको नोट करनी और प्रैक्टिस में लानी है पावरफुल योग की अनुभूति के लिए, चित्त को शांत करने के लिए, व्यर्थ को समाप्त करने के लिए। बाबा का पूरा महावाक्य है, कईयों ने सुना है, मेरे को तेरे में बदल कर, फिकर बाप को देकर, क्या ले लो, फखुर ले लो, मेरे को तेरे में बदल कर, फिकर बाप को देकर फखुर ले लो, और क्या बन जाओ, बेफिक्र बादशाह। सच तो ये इस छोटे से महावाक्य में ही सब कुछ आ गया, पर इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हमें लंबे काल का नशा हो, कौन मुझे साथ दे रहा है, अनुभूति में आ जाए, कौन मुझे साथ दे रहा है, किसने कहा है अपने मन के बोझ मुझे अर्पित कर दो, किसने कहा है, तो ले लेगा या नहीं। कई तो यही शिकायत करते, लेता है फिर वापिस आ जाते हैं, वापिस आप ही आ जाते हैं या हम बुला लेते हैं, बोलो क्या है अनुभव। हमें विश्वास कम रहता है कि बाबा को दे दिया तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम तुरंत ठीक होना देखना चाहते हैं ना। चार दिन इंतजार करनी पड़े भारी काम है, बाबा के लिए तो चुटकी बजाते ही काम हो जाता है, चार पांच दिन हो गए अब तक कुछ हुआ ही नहीं, वापिस दे दो हमें, ले लेते हैं वापिस। एक उदाहरण देता हूं आपको, आप अपने बच्चे को, आपके बच्चे को कफ हो गया, गले में तकलीफ हो गई है, बोला खरास कफ निकल रहा है, खरास हो गई है, बच्चे को डॉक्टर के पास ले गए, उसने दवाई दी और कहा कोई ठंडी चीज ना खिलाना। अब आप रास्ते से आ रहे, बच्चे ने आइसक्रीम देखी और जिद करने लगा, मम्मी आइसक्रीम खानी है मुझे, तो आप खिला देंगे? कौन कौन खिलाएंगी मम्मियां? कोई नहीं खिलाएगी, क्यों? बच्चा रोने लगता है, आपको मारने भी लगता है, मुझे खिलाओ, जिद करता है, परेशान करता है, आप नहीं खिलाएंगे ना? हाँ? नहीं खिलाएंगी, सब माताएं मना कर रहे नहीं खिलाएंगे, क्योंकि फिर तकलीफ ज्यादा हो जाएगी ना, उसके फायदे के लिए कुछ भी करके उसको वहां से हटा ले जाएंगे। बाबा भी कुछ ऐसा ही करता है, अभी देखता भी आइसक्रीम थोड़ा ठहर के खिलाऊंगा, गला तो ठीक हो जाने दो, बाबा भी ऐसे ही करता है, तुरंत खिला दे तो और रोग बढ़ सकते हैं, हम चाहते तुरंत हो जाए, इसलिए धैर्यवत भी होना पड़ेगा और देखेंगे कि बाबा सबको ठीक कर देगा, हमें उसमें विश्वास भी हो और थोड़ा धैर्य चित्त भी। हो सकता है कोई कड़ा हिसाब हमें सामने चल रहा हो, बाबा उसको निकाल देना चाहता है, निकल जाओ भाई धीरे से, दो चार दिन में वो हवा बह गई, हमारी लाइन क्लियर हो गई, फिर बाबा की मदद होगी। तो बाबा को पहचानना, उसके कार्य करने की विधि को जानना, ये बड़ा सूक्ष्म है, इसलिए मैंने कहा ज्ञान का बल चाहिए। अब जिसको ज्ञान का बल बहुत इकट्ठा करना है, वो अपनी बुद्धि को रिफाइन करो। जो भी आप में से चाहते हैं कि इस समय ज्ञान का सुख पाना है, ज्ञान को अपना विवेक बना देना है जो जन्म जन्म हमारे साथ चले, अविनाशी है ना ज्ञान, सतयुग में नहीं चलता पर चलता है, क्या चलता है सतयुग में, प्रारब्ध से पहले कुछ और नाम दे दो। जो ज्ञान हमने यहां लिया है, उसको विवेक के रूप में अपने अंदर समाया है, वो विवेक हमारे साथ है ना, हम समझदार नहीं हो गए जो किसी मिनिस्टर की भी जरूरत नहीं, जो किसी राय लेने की जरूरत नहीं, जो कहीं दुविधा में आने की जरूरत नहीं, बहुत बुद्धिमान हो जाते हैं ना। तो ज्ञान का एसेंस, विजडम, विवेक हमारे साथ चलता है, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे और विश्वास करेंगे। बाबा का ये महावाक्य भी बहुत सुंदर है, आप लिख लें और कहीं लिखकर रख दें जो पढ़ा करें। मैंने सुना इसको और जब सुना उस अनुभव से ही मैं कहता हूं कि कोई भी चीज एक दिन में धारण नहीं होती है, सालों साल लगते हैं, पर अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो मैंने भी सुना, वो सुनाता हूं आपको, मन के सारे बोझ बाप को दे दो, ये तो बाबा कहता ही है, लेकिन क्या कहा, जो बाप सारे संसार के बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों के बोझ नहीं उठाएगा? पढ़ा करें से विश्वास होता जाएगा तो उठाएगा। एक दिन लगेगा नहीं कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन लगेगा कुछ तो हुआ। पसंद है? समर्पण भाव, ये सब समर्पणता में आ गया। मेरे को तेरे में बदल दो, ये भी समर्पणता हो गई। लेकिन और इसको क्लियरली देखें, मेरे बच्चे, मेरी जिम्मेदारी, मेरे संस्कार, मेरी कमजोरियां, मेरी चिंताएं, ये सब भी मेरा है ना, इसको क्या कर दो, तेरा। चिंताएं किसकी? तेरी। इसके लिए आवश्यक है कि हम स्वयं को बाबा से गहराई से जोड़ें, मोटे रूप से नहीं। वो मेरा है, हेड बना दें उसको, चिंताएं सब वो करता है। बाबा ने तो बहुत पावरफुल बात कही है, लिखा है, मैंने स्लोगन लिखने वालों को कहा जो प्रिंट कराते, मैंने कहा भाई ये भी तो लिखो, मैं बहुत दिन से उन्हें कहता आता था, अभी उन्होंने लिख के वो बेचना शुरू कर दिया। बाबा ने कहा तुम मेरी याद में मग्न रहो तो तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। रख दो ये सब चीज अपने घर में, बच्चे तू चिंता न कर, मैं बैठा हूं। खूब प्रैक्टिस में लाना है इसको। ये बातें सरल सी हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जब कोई बात आती है भारी, तब हम इन्हें यूज करते हैं या भूल जाते हैं, ये देखना है। इसलिए इनको अप्लाई करना है, इनके प्रयोग करने हैं कि बाबा को देने से क्या होता है। ठीक है? तो अपने चित्त को शांत करें। आपके घर में कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं, पति पत्नी के बीच अच्छा संबंध नहीं, मनमुटाव है, लंबे काल से मनमुटाव है, कईयों का तो शादी से ही मनमुटाव प्रारंभ हो जाता है, चलता रहता है, दबाव आ जाता है ब्रेन पर, बीमार हो जाती हैं। अभी मेरे पास एक डॉक्टर आई, ऐसी खुद डॉक्टर है लेकिन पति से संघर्ष चलता ही आया है। अब वो है इससे ज्यादा तेज, दो में कहीं कहीं दोनों ठीक ठाक होते हैं, वो तो सबसे बड़ा भाग्य, लेकिन कहीं कहीं एक बहुत तेज, और जो तेज होता है कहीं बहने कहीं भाई, जो तेज होता है वो क्या सोचता है, हैं? मेरी बात सुने, माताएं भी हैं ऐसी, वो दूसरे पे राज करना चाहता है या गुस्सा करता है, डराता धमकाता है, परेशान करता है। तो इसने यही कहा, मेरे पति ने तो आया, ब्रह्मा कुमारियों में जाती है, आज से जाना बंद, ये घर भी छोड़ो, ऊपर एक छोटा सा कमरा दिया, वहीं रहना है बस। अब बेचारी ये डरती है, मैंने उसे पूछा तुम डरती हो, मैं बहुत डरती हूँ, वो तो बहुत तेज है, तुम डॉक्टर हो, हूं तो सही, डरती बहुत तुम। क्या करेंगे आप? देखो मैंने उसे कह दिया तुम्हारी समस्या तो बहुत कठिन है बहन जी, परेशान हो गई, आप ऐसे ना कहो, हल हो जाएगी। आप ये कह दो हल हो जाएगी, मेरा पति अच्छा हो जाएगा। मैंने कह दिया हो जाएगी हल, ये कर लो, योग लगाना, योग ही तो नहीं लगता। मैंने उसे कहा भी तुम डॉक्टर हो, कोई सीरियस पेशेंट तुम्हारे पास आ जाए और कहो ये दवाई है कड़वी थोड़ी सी, 5 बार खा लेना दिन में, ठीक हो जाओगे, और पेशेंट कहे खाई तो नहीं जाती दवाई, दवाई खाई जाती तो आपके पास क्यों आता, चलेगा काम? कुछ तो करना पड़ेगा ना। करने के लिए तैयार हो जाएं। और आप देखेंगे, उसने बात मुझे कही जो मैंने उसे विधि बताई, कहा जब मैं करती हूँ वो ठीक हो जाता है। तो मैंने कहा आगे क्यों नहीं करती, फिर मेरे से होता नहीं, मैं छोड़ देती। इसलिए लगातार प्रैक्टिस करना ये बहुत आवश्यक है। और ये सिद्धांत मैंने पहले भी आपको लिखाया, स्वस्थिति श्रेष्ठ, तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी। बहुत बड़ी ताकत है स्वस्थिति में, छोटी चीज नहीं। और स्वस्थिति श्रेष्ठ बनेगी स्वमान से। बाबा ने बिल्कुल सिंपल कर दिया, स्वस्थिति श्रेष्ठ बनेगी स्वमान से, और स्वस्थिति श्रेष्ठ बनते ही परिस्थितियां बदलने लगेंगी। इन सब बातों के अभ्यास से चित्त को शीतल और शांत करना है, तब बीज रूप स्थिति का अभ्यास होगा। मैं साथ में ये भी कहता हूं, मान लो बीज रूप न हो तो जैसा योग आपसे हो वो करो तो सही। कई लोग सोचते हैं बीज रूप होता नहीं, दूसरा करते नहीं, क्योंकि विकर्म उससे विनाश होंगे तो फायदा होगा। अच्छे अभ्यास करते करते मन आप ही आनंदित होकर स्थिर हो जाएगा। ये बात सभी को याद रखनी है, हमारे मन की स्थिरता के पीछे एक छोटा सा राज है। श्रेष्ठ संकल्प मन को आनंदित करते हैं, और जब मन आनंदित हो जाता है उसकी भागदौड़ खत्म हो जाती है, आपे वो स्थिर हो जाता है। जैसे आपके छोटे बच्चे, उन्हें मनपसंद चीज दे दो, खिलौना ही मनपसंद दे दो, बैठ जाएंगे, खेलने लगेंगे उससे। मन को भी ऐसे अच्छे विचार दो, और आप ये सोच लो मेरे मन को कौन सा विचार सुख देता है। आप लिखने के द्वारा भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे छोटी सी चीज मैं आपको बताऊंगा, आत्मा शांत स्वरूप है। आप कागज पे लिखो अपनी डायरी में, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। अब अपने से पूछो, क्या मैं आत्मा शांत हूं, और स्वरूप को हटा दो, क्या मैं आत्मा शांत हूं। फिर अपने को स्वीकार करो, नहीं मैं तो शांत हूं। दोबारा लिखो, फिर 21 बार लिखो, लेकिन इस फीलिंग के साथ कि ये मैं हूं। देखो कितना अच्छा अनुभव होगा। ऐसे लिखकर भी साधनाएं की जा सकती हैं, मैं सुख स्वरूप हूं। फिर लिखना शुरू करो, मैं बहुत सुखी हूं, यही सत्य है कि मेरा मूल स्वरूप तो सुख है। लिखने लगो, मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत सुखी हूं। 5 मिनट में सुखद फीलिंग होने लगेगी। ये लिखकर प्रैक्टिस करनी है। मास्टर सर शक्तिवान में बहुत लिखाता हूं लोगों से, बहुत फायदे। जो ज्ञान में नहीं है वो भी लिखते हैं समाधान देखकर, और बहुत फायदे, उनकी भावना होती है। भावना बहुत बड़ी चीज है। हमने टीवी पे बता दिया मैं मास्टर सर शक्तिवान हूं, 108 बार लिखने से 108 लोग सुखी हो गए हैं। अब सुना लोगों ने, जिनकी भावना ऐसा होता है हम भी लिखेंगे, लिखना शुरू किया वो भी सुखी हो गए। और जिन्होंने सोचा, ज्ञानियों ने, ऐसा भले कैसे हो सकता है, हम इतने साल से योग लगा रहे सुखी नहीं हुए, लिखने से हो जाएंगे सुखी, तो चाहे 1000 बार लिख लो कुछ नहीं होने वाला। भावनाएं बहुत बड़ी चीज है। भावना क्यों बड़ी चीज है? नहीं, अब रहस्य जान ले इसके पीछे जो है। जिस मनुष्य में किसी भी चीज के लिए भावना है वो उस चीज को ग्रहण करने लगते हैं। एक व्यक्ति में भावना है कि ये मंदिर का पानी पीने से बीमारियां ठीक होती हैं, अब वो पीते ही ठीक हो जाएगा। और कोई साइंटिस्ट वहां गया, किसने बताया कि भाई ये पानी पीने से बीमारी ठीक हो जाए, बेकार की बात, कुछ नहीं होगा उसको, उसके लिए पानी। कल मुझे बताया एक ने, अपने भाई ने, वो हिमालय में कहीं गए थे दूर, तो बताया 2 घंटे की दूरी पर, कम से कम 50-60 किलोमीटर और दूर, सेंटर भी है वहां, बहन रहती है वहां, गए तो कहा कुछ ही दिनों से गंधक का पानी कहीं से निकलने लगा है। अभी इसने क्या किया, जहां से वो गंधक के पानी की धार बह रही थी उसके नीचे अपनी कमर कर दी, कमर पे गिरने लगे वो। कहा मैं 1/2 घंटे करता रहा ऊपर से नीचे, और कहा तब से मेरा दर्द रहा ही नहीं। मैंने सोचा इसे पी भी लेता हूं, वहां कोई डॉक्टर था, मैंने उससे कहा पी लूं इसे, कहा पी ना लेना मर जाओगे। कहा मैंने पेट भर के पिया और मेरे सारे दर्द गायब, घुटना दर्द थे ये वो सब गायब हो गए। भावना की बात है ना, कोई डॉक्टर होता और वो सोचता पी लूं, पहला ही संकल्प होता रिएक्शन हो जाएगा, गर्मी हो जाएगी, मर जाऊंगा, और एक घूंट पीते ही उसका हाल बिगड़ जाता। इसने कहा मैं कई गिलास पी गया। भावनाओं का इफेक्ट है। हालांकि वो व्यक्ति ऐसा, उसको देखकर आप ये नहीं कहेंगे इसमें भी कोई भावना है, आपकी तरफ का है, नेता भी है बड़ा, भारतीय लोक दल का नेता है वो, दिल्ली का बहुत बड़ा, लेकिन उसके अंदर भावना उठ गई। मैंने उसे कहा तो मैं भी जाऊंगा, पीऊंगा तो नहीं पर कमर पे जरूर डाल के आऊंगा। मुझे लगा पीने से तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, गंधक का सल्फर, गंधक का पानी पीना तो बड़ा खतरनाक है, फोड़े फुंसी हो सकते हैं बॉडी पर उसके सारे रोग मिट गए। कल से हम कोई बैठा पर जा रहा था तो मेरे से मिलने आया, ठीक भी हो जाते हैं। तो दोनों बात होती है, किसी की ठीक हो जाती है, किसी को निकल जाती है। किसी का बॉडी गर्म है तो बढ़ सकता है। हाँ सोना में भी है, मैं भी गया वहां, हाँ चमड़ी के रोग ठीक होते, तो वहां भी गंधक का पानी निकला। देहरादून में तो इतना निकलता है एक नाला जैसा ही बहने लगता है, हैं? हाँ सहस्र धारा पर, एक बार मैं भी वहां गया। तो अच्छी चीजें है ना ये। हम बात भावनाओं की कर रहे थे, भक्ति में क्या चला है आजकल, आज तक भावनाएं तो चली आई, इसलिए पत्थर की मूर्तियों से भी मिलता रहा, नहीं तो उनमें देने में कुछ है थोड़ा ही। कोई सोचे बोला इनसे क्या मिलेगा, हनुमान बैठा है इससे क्या मिलेगा भला, लेकिन जिसकी भावना है उससे मिलने लगा। तो ये भावनाएं भी बहुत बड़ी चीज हैं। बाबा में भावना पैदा करें। ब्राह्मणों के साथ क्या हुआ है गड़बड़, ज्ञान मिलने के बाद भावनाएं सूख गई। मेरी भी सूखी थी कभी, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ था तुरंत ही गड़बड़ हो गई। बाबा ने मुरलियों में कुछ ऐसी बात कह दी, जैसे कहा मैं किसी को कर्मों का फल नहीं देता, ये तो ऑटोमेटिक है। ऐसी कुछ बातें कई आ गई मुरलियों में, है तो गहरे ज्ञान की बात, लेकिन मेरी भावनाएं भी चली गई। बात अब से 40-45 साल पहले की है, लेकिन मैंने तुरंत महसूस किया कि नहीं, भावनाओं का होना भी सुखी जीवन के लिए परम आवश्यक है। सुखी जीवन के लिए भावनाएं अगर सूख जाएं तो मनुष्य का जीवन ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। इसलिए बाबा में भी भावना, इसलिए मैं देखता हूं कुछ भोली भोली माताएं, बाबा बैठा है, मेरा बाबा सब ठीक करेगा, और भगवान को भी विवश हो जाना पड़ता है, इनका तो ठीक करना ही पड़ेगा, ये मानेंगी नहीं। और अच्छे अच्छे योगी सोचते रहते हैं पता नहीं बाबा सुनता है या नहीं, सुनवाई हो भी रही या नहीं, कहीं मेरे भी कर्म ज्यादा तो नहीं है, होगा नहीं होगा, उसका कुछ नहीं होता। इसलिए भावनाओं को भी कायम रखें। और मुख्य बात जिस पर सभी को अब बहुत बहुत अच्छा स्ट्रांगली काम करना है, सवेरे उठकर अच्छे योग अभ्यास करना। आज भी था ना मुरली में, जब सारा संसार सोया हुआ है तब तुम उठकर चिंतन करो, जब सारा संसार सोया है तब प्रभु मिलन करो, आनंद आ जाएगा ना। इस पे जरा ध्यान दें सभी, बस थोड़ी सी चीजों पर ध्यान देंगे। टाइम पे सोना, टाइम पे खाना और थोड़ा कम खाना इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं रहा, पेट अच्छा नहीं रहा, तो सवेरे योग में आनंद नहीं आएगा। इसलिए रात का भोजन, कईयों का तो मैंने सुना डॉक्टरों ने कहा रात का भोजन ना के बराबर करो, बिल्कुल छोड़ना वो ठीक नहीं, एसिड हो जाता है, थोड़ा खाओ। जिनकी आयु बड़ी हो गई है 70 साल 75 साल, उन्हें और कम कर देना चाहिए हेल्दी लाइफ के लिए भी। तो सवेरे फ्रेश उठेंगे, जिनसे नहीं उठा जाता या योग नहीं लगता सवेरे, वो शाम को योग करें। शाम को योग अच्छा लगता है, मन में अच्छे विचार उठ सकते हैं, सब कुछ फ्रेश रहता है। बस थोड़ा टाइम निकालना, आधे घंटे शुरू करो, एक घंटे तक ले जाओ। उसमें 5 स्वरूपों का अभ्यास जो बहुत सुख देता है, ऐसे रिधि होने का अभ्यास 5 स्वरूपों में पहला है वो, तो मन को अच्छे सुंदर विचारों से भरपूर करके फिर योग करें तो योग बहुत अच्छा लगेगा। शाम को योग अच्छा लगेगा, सोने से पहले अच्छा करेंगे थोड़ी देर भी, सवेरे आप ही फ्रेश आंख खुलेगी, 10:30 बजे तक सो जाना चाहिए। कई माताओं को दिक्कत होती है, होती है नहीं, देर तक आते हैं लोग, बच्चे देर तक पढ़ते हैं, पति देर से आता है बिजनेस से, उन्हें खाना पाना खिलाने में देर हो जाती है, फिर भी कुछ मैनेज करो। देखो एक माता का सुनाओ, उसका पति रात को 12 बजे आता है काम से, अभी उसको नेचुरली 1 बजता है, कितना भी जल्दी करे 1 बजेगा। तो उसने क्या कर लिया कि वो 9:30 सो जाती है और 12 से थोड़ा पहले उठ जाती है, बस फिर 1:30 बजे तक काम आराम से निपटा के फिर सोती है, आराम से 4 बजे उठ जाती है, मैनेज कर लिया उसने। तो अपने को सेट करना, पर इसके लिए जरूरी है कि उस समय को महत्व दें। और आप ये समझ लें अच्छी तरह, सवेरे बाबा हमारी सुनवाई करता है, हमें मदद करता है, हर तरह से हमें कुछ ना कुछ देता है, राजी रहता है। आपको लौकिक में भी जो कष्ट हैं उनका भी निवारण मिल जाता है, ईश्वरीय सहयोग होने लगता है। लेकिन अगर हम सोते ही रहेंगे फिर उस सहयोग को हम मिस कर देते हैं। तो सभी प्लान बनाओ, हो सकता है सवेरे उठना भाइयों का, हो सकता है जो नहीं उठते, प्लान बनाओ सवेरे करना है बहुत अच्छा। देखो तो मुझे कुछ दिन से क्या हो रहा है, रोज 3:45 आंख खुल जाती है। अब मैं कल आया ही था यात्रा से, यात्रा में थक ही जाते हैं, मैं सोचा आज 4 के बाद उठेंगे 4:15 तक, लेकिन 3:15 बजे फ्रेश। अब मैंने आजकल घड़ी देखना छोड़ दिया है, उठते ही घड़ी देखते ही क्या होती है गड़बड़ पता है ना, क्या अभी तो 2:30 बजे ना, और सो लो 3 बजे ना, क्या करेंगे जल्दी उठ के और 1 घंटा सो लो। मैं टाइम देखता नहीं, अभी बहुत फ्रेश था, बहुत फ्रेश। हालांकि मुझे 4:30 बजे थकान होने लगी, लेकिन मैंने फिर कुछ और किया और मैं सोचा नहीं मुझे अच्छे अभ्यास कर लेने हैं पूरा समय मुरली तक मेरा लक्ष्य रहता है 8 बजे तक अच्छे से अच्छे अभ्यास कर लेना। ये नहीं मुरली में अभ्यास नहीं करना है, मुरली के समय भी अच्छे अभ्यास। तो एक लंबा समय हमें स्वयं को चार्ज करने के लिए मिल जाता है, नहाते धोते भी अच्छे अभ्यास। इन सब को कर्म योग के द्वारा सफल कर लो। ये नहीं कि पौना घंटा योग में बैठे कुछ लगा कुछ नहीं लगा पूरा हो गया। पूरे समय को सफल कर लें तो आप देखेंगे कितना आनंद आएगा, बीज रूप अभ्यास होने लगेगा। तो सवेरे उठते ही अभी मुरली में आया था, एक बहुत अच्छी फीलिंग सभी कर लें, मैं आत्मा परम धाम से इस देह में अवतरित हुई। आया था ना, एक मास हुआ होगा संडे को। इसमें और कुछ जोड़ लें कि जैसे परम धाम में बाबा है, हाँ बोलते तो नहीं कोई भी, लेकिन एक विजन बना लें, बाबा ने मुझे अपनी सारी शक्तियां दे दी और कहा इन शक्तियों को लेकर जाओ नीचे, वो तुम्हारा शरीर, प्रवेश करो उसमें, वैद्य के विश्व कल्याण का काम करो। और मैं आत्मा जैसे उड़ती 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 आ गई, यहां बैठ गई विश्व कल्याण के लिए। जैसे आंख खोली आ गए, विश्व कल्याण के लिए आ गए। ऐसी अच्छी प्रैक्टिस जो मुरलियों में आती है, ये हमें पावरफुल योग कराने में सहजता ला देती है। पसंद है सभी को? चलो फिर से एक बार शिव बाबा को छत्र छाया बनाएंगे और ये इसी तरह आप किया करेंगे। देखें परम धाम में शिव बाबा को महाज्योति, सर्वशक्तिवान, इस स्वरूप में देखें जैसे कि उनकी शक्तियों की लाल किरणें सारे ब्रह्मलोक में फैलने लगी हैं। अब बाबा को निमंत्रण दें, हे प्राणेश्वर सर्वशक्तिवान, अपना धाम छोड़कर हमारी छत्र छाया बन जाओ। हमारे आह्वान पर सर्वशक्तिवान नीचे उतरने लगे। उतरते हुए देखें उन्हें, अपनी तेजस्वी किरणें चार ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। आ गए हमारे सिर के ऊपर, नीचे में शिव शक्ति, सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान छत्र छाया। ओम शांति। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। आप भोजन बना रहे हैं थोड़ी देर के लिए, बाबा यहाँ है, कहीं बैठे हैं अपनी दुकान में ऑफिस में, बाबा यहाँ है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि सारा समय ये रहे, हमारा तो भूल जाता है, भूलेगा तो अवश्य। फिर अभ्यास कर लो, फिर अभ्यास करो, फिर करो, तो बार बार अभ्यास करने से सब अभ्यास सहज होते जाएंगे। तो अपने को तैयार करेंगे कि हमें करना है, कुछ छोड़ना तो अवश्य पड़ेगा। क्या छोड़ेंगे? आलस छोड़ेंगे। करने का भी आलस होता है ना, केवल सवेरे उठने की बात नहीं, करने का आलस। और कर लेंगे, कौन कर रहा है, सब तो ऐसे ही हैं। हमारी दीदी भी तो 6 बजे उठती है, हम भी उठ जाएंगे, क्या है। मैं दीदियों को नहीं कह रहा हूँ, वो तो जल्दी उठती हैं, पर कई सोच सकते हैं ना ऐसे भी। अब चिंतन को भी अच्छा बनाए और अपने को चुस्त करें। सिंपल तरीका एक ये अपना लें आप कि तीन तीन पॉइंट का एक वीक का चार्ट बनाएं। तीन पॉइंट कौन सी? एक पॉइंट स्वमान की रख लें, एक या दो या तीन, भाई हम पूरे सप्ताह ये स्वमान प्रैक्टिस में लाएंगे और उस पर पूरा डेडिकेट कर दें, उसको लाएं अभ्यास में 20-25 बार अवश्य याद करें। दूसरा पॉइंट रख लें कोई एक बहुत अच्छी धारणा। धारणा को आप एक हफ्ते के लिए न रख के 3 मास के लिए रख लें और कुछ ऐसी धारणाएं चुन लें जिन पे आपको काम करना है। ऐसी 16 धारणाएं कम से कम हो सकती हैं जिन पे हमें कार्य करना है जीवन में। गुण तो बहुत हैं, वो अलग चीज, पर जैसे संतुष्टता, निर्भयता, सरलता, निरहंकारिता, मैंपन, मान सम्मान इसका त्याग, कर्मेंद्रियों के रसों का त्याग, उपराम अवस्था, अनासक्त वृत्ति, साक्षी भाव, ये धारणाएं हैं हमारी, बड़ी धारणाएं हैं ये सब, जिन पे मुरली ने चली है बाबा की। संतुष्टता पर मुरली बहुत चली, निरंकारिता पर, मैपन के त्याग पर मुरलियां चली, सरलता पर मुरली चली। तो एक तीन तीन मास का इस तरह प्लानिंग करो आप, हो सकती है स्वयं करनी है। आप स्वयं करेंगे तो एक रास्ता मिल जाएगा। ये पुरुषार्थ का सुंदर तरीका है। योग का कि मुझे योग, वो एक एक हफ्ते का करेंगे, स्वमान और योग एक एक हफ्ते का। मुझे इस घंटा, इस हफ्ते, ऐसे भी कर सकते हैं, इस टाइम योग करना है, इस टाइम बैठना है, इस टाइम ये अभ्यास करने, उसकी एक अलग से प्लानिंग कर लो और लक्ष्य बना लो 4 घंटे तक उसे ले जाना है। एक अच्छी स्मृति, एक अच्छी स्थिति, 4 घंटे बैठने की उसमें बात नहीं है। ऐसा एक प्लानिंग करो। एक बात मैं और कहूं, बहुत पावरफुल बात है पर सबको करनी है। मान लो आपके घर में, ऑफिस में, जहां भी आप रहते हैं ज्यादा समय, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बार बार उल्टा सुलटा बोलता है। सबके साथ होता ही है कोई ना कोई, ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं जिसको एक भी ऐसा परम मित्र न हो, या कोई ऐसा हो तो हाथ उठाए, वो बहुत भाग्यवान। सबके रहते हैं, किसी के घर में होगा, किसी के ऑफिस में, किसी के दुकान पे, किसी का ग्राहक, कोई ना कोई तो परीक्षा लेने आएगा। अब हमें क्या सोचना है? हम सोचते हैं ये व्यक्ति बहुत बोलता है, मुझे बड़ा डिस्टर्ब करता है, डिस्टर्ब होते रहते हैं, उसे कोसते रहते हैं। क्यों ना हम संकल्प कर दें उसका काम वो करे, मेरा काम मैं करूंगी। उसका काम है बोलते रहना, मेरा काम है डिस्टर्ब न होना। देखो आपकी जीत हो जाएगी फटाफट। कई बातें अपना सकते हैं फिर आप उसमें, कुछ सुनो नहीं पर कोई बोल ही ऐसा रहा हो कि कान तो खुले ही है ना, सुनता हो तो उसके इफेक्ट को कम कर दो, हल्केपन से लो, ये बोल रहा है ठीक है कोई बात नहीं बोलने दो। अपने को हल्का करें, पावरफुल करें। अगर ऐसा कोई करता है तो बोलने वाले बहुत पीछे चले जाएंगे और ऐसा करने वाले बहुत आगे निकल जाएंगे। ये हमेशा याद रखना, संगठनों में, परिवारों में। मैं बाबा की जब ये मुरली में ये पॉइंट सुनता था, ज्ञानी आत्माएं वे हैं जो मान अपमान, सुख दुख, हार जीत, निंदा स्तुति में समान रहे। ये बात मुझे बहुत आकर्षित करती थी। तो मैं सोचता था निंदा हो ही नहीं तो समान रहने की बात क्या, कोई बुरा बोले ही नहीं तो समान रहने की बात कहां। तो मन बना लिया कि महिमा भी होती है तो ग्लानि भी जरूर होगी। 10 लोग महिमा कर रहे हैं, 2 ग्लानि भी करेंगे, यही विधान है इस ड्रामा का। बार बार जीत हो रही है, 1-2 बार हार भी होगी। सब लोग आपको बहुत सम्मान दे रहे हैं, 1-2 व्यक्ति ऐसा भी होगा जो अपमानित करना चाहेगा। तो इस संसार के इस विधि विधान को समझ लें। मैंने समझ लिया, मैंने किया ये सब खूब प्रैक्टिस, समझ लिया कि ये सब होगा, इसलिए अपनी स्थिति को बिगाड़ना नहीं है। तुम कितना भी अच्छा काम करो, 2-4 तो ऐसे मिल ही जाएंगे ना बोलने वाले, या नहीं मिलेंगे, और मिलने भी चाहिए ताकि हम प्रशंसा सुनकर जरा फूल न जाए ज्यादा, थोड़ा बैलेंस भी रहे। तो हमें ऐसा एटीट्यूड बनाना है अपना, पॉजिटिव, इसको एक धारणा बना लो, तो आप देखेंगे आपकी स्थिति का प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा ही। वो जरूर महिमा करेंगे, यार हम बहुत बोलते हैं, ये तो बहुत सेंसी लोग हैं, ये तो सुनते ही रहते हैं। कई तो परेशान होके ये भी कह देते थे माताओं को, ब्रह्मा कुमारियों ने तो इन्हें पत्थर का बना दिया, कोई बात असर ही नहीं करती, हम बुरा बोलते रहते हैं ये मुस्कुराती रहती हैं। कही तो ब्रह्मा कुमारियों का जादू है भाई, ज्ञान का जादू है ना ये। तो ऐसा प्लानिंग सभी को करना है, अपनी अपनी प्लानिंग। मैंने तो देखो क्या किया था, 16 धारणाओं की लिस्ट बनाई थी, बहुत पहले बनाई थी, और सोचा इन सब को परिपूर्ण करना है, सबको, एक भी चीज छूटे नहीं। उसमें बहुत सुंदर थी साक्षी भाव, जिसकी मैंने सालों साल प्रैक्टिस की, तो फिर ऐसा हो गया आजकल तो वो नेचुरल सा हो गया, कुछ भी हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, कोई बात नहीं। उसमें 2 बातों ने बहुत बल दिया था, एक थी इस ड्रामा में सभी का अपना अपना पार्ट है, सब आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं, तो यहां किसी का कुछ भी दोष नहीं है, मन निर्मल होने लगा इससे, किसी का दोष नहीं है, निर्मलता आ गई। दूसरी बात थी बहुत पावरफुल, बाबा ने एक प्रैक्टिकल घटना पर कहा था, जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, वही होना चाहिए, कुछ भी ड्रामा में गड़बड़ नहीं है, परफेक्ट बना हुआ है, नथिंग न्यू। तो मैं सोचने लगा आप भी इस तरह सोचा करें, देखो ये चक्र सृष्टि का कितनी बार घूम गया, कितनी बार, पीछे की माताएं बताएंगे कितनी बार घूम गया, अनगिनत। अनगिनत कहने से थोड़ा मजा कम आता है, मैं आपको एक अंक दे देता हूं इसमें। मान लो मैं आपको कहूं कि ये चक्र 10,000 बार घूमा, 10,000 बार हमने माया को जीता, 10,000 बार शिव बाबा ने ऊपर बैठकर दोनों ने ये संसार का विनाश का खेल देखा, 10,000 बार ही फिर यहाँ पर सतयुग स्थापित होता हुआ भी देखा और हम सब देवी देवता रूप में आकर वहां पहुंच गए। सोचो आप, ये सब हमने 10,000 बार किया, कैसी फीलिंग होगी, सोचना इसको। तो विनाश तो हमने बार बार देखा है, एक बार देखा हो तो भारी लगेगा, फिर होगा नहीं, ये तो 10,000 बार देखा है, 1,00,000,000 बार देखा है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, वही हो रहा है जो हुआ था। तो चित्त शांत हो जाएगा। अध्यात्म की, ज्ञान योग की सबसे सुंदर स्थिति है साक्षीपन, और ऐसी गहरी स्थिति है अनासक्त वृत्ति, और ऐसी गहरी स्थिति है मान की जरा भी कामना न हो। होती है मनुष्य को, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं होती, होती है, लेकिन हम इसे ऊपर उठ जाएं कुछ बातों के द्वारा। और वो बात जिसकी मैंने बहुत प्रैक्टिस की, कर्म करो बाबा को अर्पित कर दो, महिमा हो साथ साथ ऊपर भेज दो, सम्मान हो साथ साथ ऊपर, तो उसका इफेक्ट ही नहीं होगा। जब उसका इफेक्ट नहीं होगा तो अपमान का इफेक्ट भी नहीं होगा। जो सम्मान से प्रभावित हो गए वो अपमान से परेशान अवश्य होंगे, जो जीत से फूल गए वो हार से निराश अवश्य होंगे। इसलिए बहुत सुंदर बैलेंस। बस मैं आपको कुछ स्वमान और याद दिला देता हूं जो आपको मदद करेंगे बीज रूप अभ्यास के लिए, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ये अंडरलाइन कर लेना। प्रैक्टिस को ही कहते हैं तपस्या, बार बार प्रैक्टिस करना माना तप करना। स्वमान, मैं एक महान आत्मा हूं, इसको फील करेंगे आप, इसको स्वीकार करेंगे। फील करने से भी अच्छा शब्द है स्वीकार करना, और जिस स्वमान को हम स्वीकार करेंगे वो हमारा स्वरूप बन जाएगा। दूसरा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। तीसरा, मैं विजय रतन हूं। चौथा, विघ्न विनाशक हूं। पांचवा, विश्व कल्याणकारी हूं, विश्व कल्याणकारी हूं। हो गया, पूर्वज हूं, मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, इष्ट देव देवी हूं। माताएं तेज लिख रही आपसे, बस विश्व कल्याणकारी, मास्टर ज्ञान सूर्य, इष्ट देव देवी, पूर्वज, कुछ और गहरे भी हैं, प्रकृति की मालिक हूं, जहान का नूर हूं। इनकी आप प्रैक्टिस करना, जैसे मैंने कहा एक एक को आप लिख सकते हैं 21 बार, ज्यादा बार नहीं, 21 बार, ताकि अंदर भेजो ये मैं हूं, ये कोई और नहीं, मैं हूं, पूर्वज मैं हूं, मुझे सबकी पालना करनी है, मंदिरों में जिसकी पूजा हो रही वो मैं हूं, तो वो स्वरूप बनता जाएगा। और सब याद रखेंगे, जिन्होंने जिस स्वरूप की ज्यादा प्रैक्टिस की होगी विनाश काल में, वही स्वरूप भक्तों को दिखाई देगा। अब है हमारी मेहनत, और तब वो आधार बन जाएगा विश्व सेवा का। इसलिए बहुत अच्छा ध्यान देंगे प्रैक्टिस पर। माताएं तो बहुत अच्छा कर सकती हैं, एक काम किया घर का, 5 मिनट योग कर लिया, दूसरा काम किया, फिर 3 मिनट योग कर लिया, स्वमान याद कर लिए, ऐसे थोड़ा थोड़ा काम करके थोड़ी थोड़ी देर प्रैक्टिस कर लो, 3 मिनट 5 मिनट, इतनी प्रैक्टिस सारे दिन आप करेंगे तो शाम तक आपको लगेगा हम सारा दिन योग युक्त रहे हैं। वही तो हमारा लक्ष्य है ना। तो सभी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हुए अपनी स्थिति को आगे बढ़ाएंगे। मैं फिर आपको याद दिला दूं, समय बहुत क्रिटिकल आता जा रहा है, तूफानी समय। एक को मैंने बता दिया, वो फट से कहती तो हमारे बच्चों का क्या होगा। मैंने कहा अच्छा ज्ञान ले लो, तुम्हारे बच्चों का भी पता चल जाएगा क्या होगा। आओ बहन जी, माताओं को मैंने पूछा बच्चे कितने बड़े, एक 22 साल का, दूसरा 20 साल का। मैंने कहा छोटे नहीं, वो आप ही सोच लेंगे हमारा क्या होगा, तुम अपना सोचो मेरा क्या होगा। आप
ओम शांति। सभी ने पुरुषार्थ और सोन्नति के लिए भाई जी से जो भी बातें हमने सुनी प्रैक्टिकल, वो जाकर के नहीं लेकिन यहाँ से ही अभी से ही बाप दादा दादियों को सामने रखते और इतनी मेहनत हमारे लिए। भाई जी तो कहते मेहनत नहीं, निमित्त बन करके मैं करता हूँ, लेकिन जो आज हम सभी को ज्ञान रत्न दिए उनको हम जरूर प्रैक्टिकल में लाएंगे। और यही दृढ़ संकल्प करना और उसको प्रैक्टिकल में लाना, वो ही भाई जी के लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा या थैंक्स होगा। तो भाई जी को दिल से हम सभी थैंक्स देते हैं।